अब इसके बाद अगले हिस्से में मजमुई तौर पर अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वस्कुरीबाद अना, पहले अब्द था भी बाद आ गया, जमा का सीगा देखिएगा, और याद करो हमारे बंदों को, कौन से बंदे, इब्राहिम, इब्राहिम, फिर इब्राहिम का जिक्र आ गया, अभी चंद दिन में तो पढ़ा, अच्छा वो पिछली सूरत थी, ये कैसे हो सकता है कि इस सूरत में बाकी नबियों का जिक्र है तो इब्राहिम का ना हो। इतनी तेजी से सूरतें चलेंगी कि आपको लगेगा अच्छा इब्राहिम की स्टोरी तो हम पढ़ चुके, अच्छा नहीं वो सूरत सौफात थी। ये मोहब्बत होती है जो अल्लाह को अपने नबियों से महसूस होती हुई दिखती इन आयतों में कि इब्राहिम व इसहाक व याकूब, इनको याद करो, कौन है ये तीनों, एक लड़ी में डाल के देख ले, दादा बेटा और पोता, कौन थे ये, उलिल अइदी वल अबसार, जो कुव्वत वाले भी थे और बसीरत वाले भी थे, हाथ तो सबके होते हैं, यहाँ हाथ से मुराद वही है जो पीछे हजरत दाऊद के लिए भी आया, अल्लाह ने इनको कुव्वतें दी थी, बसीरतें दी थी, समझें दी थी, ये बहुत जीनियस लोग थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, क्यों, इसलिए कि इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, हमने इनको खालिस कर लिया था एक खालिस शय यानी आखरत के घर की याद दहानी के लिए। इसको हाईलाइट करें, ये आज के सबक में से हमने लेके जाना है अपने लिए, मैंने अपने आप को आखरत के घर की याद के लिए खालिस करना है। इन लोगों की जिंदगी का एक यही मकसद था कि हमेशा लोगों को आखरत की जिंदगी की तरफ मुतवज्जे करते थे। देखिए अल्लाह का जो बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाता है ना, फिर इसे दुनिया के मालो दौलत और दूसरी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, सिर्फ जरूरियात की हद तक। जिंदगी में अगर इसका कोई हदफ होता है तो बस यही है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, इन्हें आखरत के बुरे अंजाम से बचाए। फिर इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इसी हदफ के लिए सर्फ होता है, इसकी तमाम सलाहियतें सिर्फ इसी मिशन के लिए वक्फ हो जाती हैं। ऐसे वक्त में फिर बंदा जमीन के टुकड़ों पर चले, इधर से उधर से कहां क्या गया, एक मकसद होता है कि लितकून कलिमतुल्लाही हियल उल्या, अल्लाह के कलमे को बुलंद करें। हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अंबिया कराम देख लीजिए, सहाबा देखिए, कभी एक जगह नहीं ठहरे, अभी जरा पांव जमने लगते हैं तो उठ के तो दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और कई ऐसी हस्तियां हैं कि जिन्होंने ना फिर कारोबार किए, कारोबार कैसे करें, और जॉब कोई पक्की ली तो कहाँ की ली, बस फिर वो चलते फिरते अपने काम चलने वाले लोग होते हैं। अल्लाह कहते हैं हमने इनको खालिस कर लिया याद के लिए, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफईन अलखियार, यकीनन वो हमारे नजदीक चुने हुए और नेक लोगों में से हैं। गोया के जो शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने और इसके दीन की दावत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करता है और उसका जीना मरना सिर्फ इस मकसद के लिए होता है, वो अल्लाह की नजर में मुस्तफईन अलखियार। पहले तो दुआ करते हैं अल्लाह हमें बना दे, लिख ले ये सवाल, इनको असाइनमेंट में जरूर दें कि मुस्तफईन अलखियार कौन लोग होते हैं, तो फिर सुन लीजिए, जो अल्लाह की तरफ बुलाने और इसके दीन की दावत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे, जिसका जीना मरना सिर्फ इस मकसद के लिए हो, अल्लाह उसको चुना हुआ कहते बरगुजीदा। आप कहेंगे ये क्या चुना हुआ है, ना तो विक्ट्री स्टैंड है, ना कोई पंप एंड शो है, ना ग्लैमर है, ना कोई इनके आने पे तिबल बजते हैं और ना लोग खड़े होते हैं, ना इनके लिए झंडों वाली गाड़ी है। अल्लाह कहते हैं इनके लिए ये सब प्रोटोकॉल हमने संभाल के रखा हुआ है, बस ये समझदार लोग हैं, इनको अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना, हक को देखते हक को सुनते, इनका दिल आखरत के साथ लगाता है, हर अमल आखरत के लिए, दुनिया की मोहब्बत से अलग आखरत की जिक्र में मशगूल, वो अमल करते जो जन्नत दिलवाएं, लोगों को भी नेक अमाल की रगबत दिलाते, खुद भी कोशिशें करते, सारी जिंदगी नी कोशिशों में लगे रहे कि एक दिन वाकई उस घर में पहुंच गए। पूछिए मुझे कितना ही आखरत के घर की याद है, क्या मैं कोशिश करती हूँ उसको सोचती हूँ, दुनिया के घर की ज्यादा फिक्र है या आखरत की है। हदीस में था कुन फिर दुनिया का नक गरीब नाबिर सबील, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या राह चलते हुए मुसाफिर। जरा अपने घर के सिलसिलों को देखिए और अपनी जिंदगी की मुशक्कतों को देखिए, कितनी जिहाद वाली जिंदगी है मेरी, सारा वक्त इन्हीं चीजों को समेटते उठाते और गिनते और फिर और लेते हुए गुजर जाती है, तो फिर आखरत की याद कहाँ आएगी, इतने सजे सजाए घरों में तो आखरत कहाँ याद आएगी, कहाँ जन्नत के घर की तलब आएगी अगर घर ही क्रिस्टल से भरा पड़ा। कहेंगे तुम वहां का जन्नत लोगे, मुझे अभी मिली हुई है, थैंक यू आई एम वेरी कंफर्टेबल। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान को इतनी तलब भी नहीं रहती। सिंपल सी बात है, कोई ऐसे घर में रहता है जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, घुटन है, घर बड़ा तंग है, आप उसको थोड़ा सा भी ख्वाब दिखाएंगे ना बड़े घर का या बिजली पानी का, तो कहेगा रियली इज इट पॉसिबल, मुझे ले जाओ उधर। और जिसके घर में हर चीज है, दौलत उसके घर की बांधी, वो क्या कहेगा, ओके ठीक है, वैसे आई एम फाइन, आई एम कंफर्टेबल। क्या जो आपको लोगों का ये रवैया नहीं दिखता, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मैं बहुत मुतमईन हूँ। तो इसके लिए दुनिया को सादगी के साथ जरूरियात पे रखें। देखिए जिंदगी कंफर्टेबल बनाए, मैं ये नहीं कहती कि अब आप कपड़े हाथ से धोएं और कुंडी डंडे में मिर्चें पीसें, बात ये नहीं है। आपके घर में 10 मशीनें भी हो सकती हैं, किस लिए, कि आप अपना वक्त बचाएं, क्वालिटी का काम करें और सलीके से पेश करें। लेकिन हर वक्त एक को छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, खूब सोए खूब तर की तलाश, ये ज्यादती है। फिर एक छोटी सी चीज को पकड़ के इसे फेंक देना, उसकी जगह दूसरी, और हर वक्त ये जो आप ग्रेड करने वाली कैफियत है ना, ये नहीं हो सकती। आप सब एक काम करें, मैं भी करती हूँ, मुझे तो वैसे ये काम बड़ा अच्छा लगता है, अपने पूरे घर को फिर एक नजर देखिए, किचन के ड्रॉस से लेकर बाथरूम की कैबिनेट तक, कौन सी चीज है जिसकी मुझे जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने शौक के लिए पाली हुई है, कितना माल मेरा लग गया। देखिए बाज़ बाज़ चीजें बाजार सस्ती होती हैं, आप कहते हैं क्या 1 पाउंड की है ना ले लो, लेकिन जब पूरे घर के वो पाउंड जमा करेंगे तो वो कम से कम इतने पैसे बन जाते हैं कि उससे पाकिस्तान में आप 20-25 ईंटें तो खरीद सकते हैं किसी मस्जिद के लिए। अपनी जात पे खर्च करते वक्त 10 दफा सोचिए कि ये मेरे लिए 1 पाउंड है, किसी के लिए हो सकता है ये 2 वक्त की रोटी हो, किसी गरीब का एक पूरे दिन का राशन इससे आ जाए, जिससे सिर्फ मेरे एक शौक की तस्कीन होगी, और वो शौक भी पता नहीं घर आके पूरा होना है कि नहीं होना। इसलिए इंसान इन चीजों को अपने ऊपर लेकर सोचे, बहुत जरूरत है इस बात की। और खाली जगह पे जहन बहुत मुतमईन रहता है ना, आपके सामने की दीवार पे अगर डिस्ट्रेक्शन नहीं है तो आप बड़े खुश रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर 2-4 फूल, तस्वीरें, कहीं कुछ लगा तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे। तो बस जिंदगी को सादा कर लें, वक्त गुजारिए, वक्त के पहिए को खींच खूंच के कभी भी किसी तरह आखिरत के घर में पहुंचा दें, बस इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपने आप को खुद पाएंगे, जैसे अल्लाह ने इधर कहा हजरत अय्यूब के लिए, कि न वजद ना हो साबिरन, साबिर ये औरतों का सब्र होता है, अगर वो ले सके फिर ना ले। देखिए पैसे किसके पास नहीं है, लाखों होंगे करोड़ों होंगे आपके पास, पर जाया तो मुझे एक भी नहीं करना, इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं अल्लाह के हुक्म से लाखों भी लगा दूंगी, लेकिन जाया नहीं करना। तो ये है साबिर, नेम अवाब, और अवाब बनता ही बनता तब है कि बार बार उसका ध्यान अपनी जरूरत पे नहीं, दूसरों की जरूरियात पे जाता है। एक छोटी सी टिप है, मुझे नहीं पता कि किसी को फायदा देगी नहीं, लेकिन पता नहीं कि मेरे दिल से आज तक नहीं निकली वो टिप, बता दो। और इसमें कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कि आप जरूर ऐसा करें, लेकिन मुझे उस चीज से खुद जाती तौर पे बहुत फायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने मुख्तलिफ जगहों पे जाके रहने का मौका दिया। करेंसी की बात कर रही हूँ, करेंसी बदलती है ना, आप पाकिस्तान में होते हैं आपकी एक करेंसी है, फिर आप अमेरिका में गए तो और करेंसी बन गई, इजिप्ट में चले जाएंगे तो करेंसी लेवल और हो जाएगा, वहां से आप उठते हैं नॉर्वे आ जाते हैं, पूरी दुनिया की करेंसी फर्क है ना। हर मुल्क की करेंसी को इस्तेमाल करते वक्त अपनी असल करेंसी को ना भूलें, ये टिप है। मसलन आप बचपन में से पैदा होने से लेके बड़े होने तक रुपीस देखते आए ना, बस इस रुपी का मल्टीपल कभी ना भूलें। अमेरिका में गए तो ये $1 नहीं है, ये 100 रुपए हैं, और ये 1 पाउंड नहीं है, ये 150 रुपए हैं, और ये 1 करोन नहीं है, ये 15, 16, 14, 12 जितने भी हैं वो है। जब आप अपना असल माल जहन में रखते हैं ना, तो आप कभी फजूल खर्च नहीं होंगे। ये सोच के पाउंड शॉप है, डॉलर शॉप है, आप सोचेंगे डॉलर की ये एक चीज है, 125-150 की चीज है, मेरा तो नहीं ख्याल ये इतने की वर्थ इट है, पाकिस्तान में तो इतने की 10 आ जाएंगी, छोड़ो वहां से ले लूंगी, चलो छोड़ो। यानी सिर्फ आपको कह रही हूं कि जैसे किला होता है ना भैंस को बांधने के लिए, खुद को बांधने के लिए कभी अपने मुल्क की करेंसी को छोटा ना समझे। मैंने देखा है लोग अपने मुल्क में जो करेंसी होती है बेदरीक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी होती है ना, आज खत्म होगी फिर अल्लाह के हुक्म से मियां साहब ले आएंगे अगले हफ्ते महीने में और आ जाएगी, लेकिन कोई दूसरी करेंसी अगर कभी आपको यूज करनी हो तो वो बहुत कंजूसी से लोग यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर उसको बिग एक्सचेंज रेट पे खरीदना पड़ता है। तो जब आप इस दुनिया की जरूरियात को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को लाते हैं ना, कहीं भी पहुंच जाए, ये चेक कीजिए कि ये चीज इतनी वर्थ इट है कि नहीं है। इसी से फिर आप देखेंगे अब उलेल अबसार और उलेल ऐद बनेंगे। ये जुमले इतने खूबसूरत है ना, हाथों वाले आंखों वाले बेबसीरत लोग नहीं थे, और न खट्टू और नकारा लोग भी नहीं थे, कुव्वत भी थी, कुदरत भी थी। यहां इससे मुराद ये भी है कि बामल लोग थे, अल्लाह की अतात करने और मासियतों से बचने की ताकत रखते थे, और दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए बड़ी कोशिशें की थी। और जहां आंखों की बिनाई से मुराद दिल की बसीरत है, हक शनास है, हकीकत को जानते हैं, दुनिया में अंधों की तरह नहीं चलते, आंखें खोलकर इल्म और मार्फत की पूरी रोशनी में हिदायत के सीधे रास्तों को देखते हुए चलते हैं। इशारा है इसमें हल्का सा कि जो लोग बदअमल और गुमराह हैं, वो दर हकीकत हाथों और आंखों दोनों से महरूम है। हाथ वाला हकीकत में वही है जो अल्लाह की राह में काम करे, और आंखों वाला असल में वही है जो हक की रोशनी और बातिल की तारीकी में फर्क कर सके। और ये चीज बंदे को दुनिया में भी कामयाब कर देती है। मत सोचिए कि दुनिया में लोग अपने आप को नाकाम करते हैं, अल्लाह दुनिया में भी इनको कामयाब करता है। और फिर पीछे वही आखरत के घर वाली बात याद रखिए, जिक्रतदार। और ये सारी अकलमंदी, ये फहम, ये छोटी छोटी बातों को नोट करना कब आता है? जब दुनिया तलबी खत्म हो जाए और दुनिया परस्ती खत्म हो जाए, सारी फिक्र कोशिश आखरत में हो, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह हिकमतें भी देता है। यहाँ आप बड़ा लतीफ सा नुक्ता भी एक नोट करें पिछली आयतों में कि अल्लाह ने आखरत के लिए सिर्फ दार नहीं कहा, वो घर या असल घर, बल्कि ये कहा कि ये दुनिया सिरे से इंसान का घर है ही नहीं, असल घर वो है, क्योंकि ये तो एक गुजरगाह है, मुसाफिर खाना है, ये एक रास्ते की चीज है। तो अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया को एक मुसाफिर की तरह यूज करता है और आखिरत को अपना परमानेंट रेजिडेंसी का एड्रेस बना लेता है। जो इधर बैठ के सब कुछ वो करने लग जाए जो जाके उधर करना है, तो वो फिर अकल वाला तो नहीं हो सकता, समझ वाला तो नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझ दे दे। अब आगे आप देखिएगा कि कितने प्यारे तरीके से अल्लाह ताला इनका खूबसूरत अंजाम दिखाते हैं। वस्कुर इस्माइल वल यसा वजल किफल वकुल्लुन मिनल अखियार। और जिक्र कीजिए इस्माइल, यसा और जुल्किफल का, ये भी बहुत उम्दा लोगों में से थे। अब देखिए अल यसा और जुल्किफल, इनके बारे में बहुत कम मालूम आता है। सूरत अंबिया की आयत 85 में हम बात कर चुके हैं कि जुल्किफल जो हैं वो नबी थे, और किस दौर से थे, कहाँ थे। बास कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध थे और इनका असल नाम सुधारता था। गौतम बुद्ध या गौतमा बुद्ध इनका लकब था जो बाद में मशहूर हुआ, और आप रियासत कपल विस्तों के वली अहद थे। लेकिन बास कहते हैं कि कुरान में जुल्किफल के नाम से जो गौतम बुद्ध का जिक्र है, तो फिर ये कौन सा है? कुछ कहते हैं इसको जुल्करनैन से भी लेते हैं। किफल क्या है? दरअसल कपल ही की कहते हैं किस्म है। यानी बाज लोगों का ख्याल है, अल्लाह नोस दी बेस्ट, कि ये इंडिया के जो गौतम बुद्ध मारूफ है उन्हीं का नाम है। लेकिन ये बात दुरुस्त हो ना, इसको आप पीछे भी कर देना, तो एक बात तो याद रखिए, हर मजहब के लोग जब भी अपने किसी बड़े की बात करते हैं ना, तो वो अपने दौर के नबी की तालीमात से बिगड़ा हुआ मजहब होता है। मसलन जैसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है अल्लाह ने किसी दौर में हिंदुस्तान में भी कोई नबी भेजे हो, और आज वहां के लोगों के जो अकायद है ना, वो उन्हीं नबी की तालीमात से दूरी का नतीजा है। तो हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते, बस ये कह देते हैं कि ये भी चुने हुए थे। अल्लाह ने जब किसी को चुना हुआ कह दिया, अब उनके नामों में पढ़ के मैंने और आपने क्या करना है, और हमें उनसे क्या लेना और क्या देना। हजरत यसा के बारे में लोग कहते हैं कि ये हजरत इलियास के जानशीन थे, और अल तारीफ के लिए है और अजमी नाम है, यानी अरबिक नाम नहीं है। और अख्यार खैरुन या खयीरु, यानी खा या रा है ना, तो खा पे जबर, या पे जजम और रा पे पेश डाल दें डबल, तो खैरुन, या तो ये यही है, या फिर या के ऊपर शद के साथ जेर डाल दें, खैर, खैर जो चुना हुआ वही जब, इसकी जमा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैयतुन की जमा अमवात होती है। तो अल्लाह इनको चोजन पीपल कहता है। ये वो लोग हैं कि जिनकी हकीकत में कुर्बानियों को और जिनकी कोशिशों को अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, ये चुने हुए लोग हैं। और ऐसे लोगों को हकीकत में इस चीज का यकीन होता है कि हमने अपने आप को अल्लाह की मर्जी का बनाना है, और जितना बनाते जाएंगे उतना फायदा होगा। और ये जो यसा नाम है ना, ये इनका जिक्र कुरान पाक में 2 दफा आया है। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र ऐसी राह चलते हुए थोड़ा सा किया है, डिटेल्स इनके बारे में नहीं पता। पहले सूरत अल-अनाम आयत 86 में था और अब यहाँ आया। दोनों जगह ही तफसील कोई नहीं। बस कहते हैं ये बनी इसराइल के बड़े नबियों में से थे और उर्दन के किनारे के एक मुकाम पर रहते थे, और यहूद और नसारा इनको ईशा, आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा क्रिश्चियन के मुझसे, ईशे या ईशु भी कहते हैं, तो कहते हैं ये वही ईशा जिनको कहते हैं, या एलिशा कह लीजिए, अलीशा नाम से ये लोग आज याद करते हैं, तो ये वही नबी हैं। और अल्लाह ताला ने इनको जिस काम पे लगाए थे इन्होंने उसको कर लिया। डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, है बहुत सारी डिटेल्स किताबों में, लेकिन मेरा लगे हम असल मकसद से फिर हट जाएंगे। और ज़िल किफ़ल का जिक्र भी कुरान में 2 ही जगह, एक सूरत अंबिया और दूसरा इधर है। अब ये देखेंगे कि इन चुनौवों को मिलेगा क्या, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें भी दे देना जो इनको मिलेगा। फरमाया हाज़ा ज़िक्र, ये एक जिक्र है, दिस इज़ आ रिमाइंडर, इट्स अ रिमाइंडर। वइन्ना लिलमुत्तकीन लहुस्न मआब, और यकीनन मुत्तकियों के लिए बहुत अच्छी जगह है लौटने की। मुत्तकी पलट पलट कर जिन चीज़ों जगहों पे आएंगे वो बहुत खूबसूरत होगी। कैसी होगी? जन्नाति अदनिन, हमेशगी की जन्नतें। अदन हमेशगी को कहते हैं, एवर लास्टिंग। मुफत्तहत लहुमुल अबवाब, खुले रखे जाएंगे उनके लिए उसके दरवाजे, यानी जन्नत के दरवाजे खुले होंगे ऑटोमेटिक। आज तो हम तसव्वुर कर सकते हैं, जब ये आयतें उतरी थी कोई सोच सकता है कि आप पास जाए तो दरवाजा खुद ही खुल जाए, या तो इंसान खोलता है या कोई दूसरा उसके लिए खोलेगा, लेकिन आप पास जाए और एकदम दरवाजा खुले। आज ऐसे नज़ारे आप देखते हैं ना हॉस्पिटल्स में और होटल्स में, ऐसे दरवाजे आम है। जन्नत के लिए ये जिक्र क्यों आया कि दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। और जन्नत के दरवाजों का जिक्र तो इंशाल्लाह हम सूरत ज़ुमर के आखिरी रुकू में बड़ी डिटेल से देखेंगे। अल्लाह कैसे अहले जन्नत का इस्तकबाल करेगा और अहले जहन्नम को किस तरह वहां शर्मिंदगी होगी। जन्नत वालों के लिए दरवाजे पहले से खुले होंगे, जैसे किसी मेहमान का इंतजार खुले दरवाजों के साथ किया जाता है ना। बाद जब आखिरी वक्त में आप दरवाजा भी खोल देते हैं कि कहीं उनको इंतजार ना करना पड़े, आने पे खोला जाए। तो जन्नतियों के लिए दरवाजे खुले हैं, जन्नतें सज चुकी हैं, मेहमानी उनकी तैयार है। इसके बरक्स अहले जहन्नम को हांक कर जहन्नम की तरफ ले लिया जाएगा। वसीकल लजीन तक़व इलल जन्नति ज़ुमरा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह ज़ुमर में। अल्लाह हमें जन्नत के दरवाजों के लिए ले जाए। अब देखिए कि जहन्नम की मिसाल जेल की है, और जेल के दरवाजों को मामूल के मुताबिक तो बंद ही रखा जाता है ना। जब कोई नया मुजरिम आता है थोड़ा सा खोलते हैं और उसको अंदर डाल देते हैं, खुला रखें तो भाग जाएगा ना। इसी तरह मुवत्तहतल लहुमुल अबवाब के कुछ और मानी भी हैं, नोट कीजिएगा। नंबर 1, जन्नतों में वो बेरोक टोक फिरेंगे, कहीं उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि दुनिया में रिस्ट्रिक्शंस को पूरा कर चुके हैं ना। दूसरा ये कि जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुश्किल नहीं होंगे बड़े बड़े दरवाजे, जब ख्वाहिश करेंगे फौरन खुल जाएंगे। वही बात है जो हम कहते हैं कि कुन और फयकून, वो हो जाता है, दरवाजे के पास गए और दरवाजा खुल गया। तीसरे इसका मफहूम क्या है कि जन्नत के इंतजाम पर जो फरिश्ते मुकर्रर होंगे वो अहले जन्नत को देखते ही इनके लिए दरवाजे खोल देंगे। और यही बात कुरान पाक में सूरह ज़ुमर आयत 73 में भी आती है, हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दखुलूहा खालिदीन। यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और इसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे, तो जन्नत के इंतजाम करने वाले इनसे कहेंगे, सलाम अलैकुम, खुश आमदेद, हमेशा के लिए अब इसमें दाखिल हो जाइए। अल्लाह हमें जन्नत के दरवाजों से अंदर ले जाना। आप कहते हैं कि जन्नत कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं, और रिवायात में आता है कि एक वक्त आएगा कि उधर भी रश होगा, यानी लोग वहां से गुजर नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ होगी। तो मत सोचिए कि सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे, इंशाल्लाह जन्नत में भी बहुत सारे जाएंगे, और अल्लाह आपको भी लेकर जाए, हम सब वहां जन्नतों में मिले। और वहां जाएंगे तो देखेंगे अरे इतने लोग जन्नत में आ गए, क्योंकि हर तरह के लोग मौजूद है ना। अल्लाह ताला ने लोगों को मौका दिया हुआ है, आज इस दुनिया में रहते हुए अपनी नेमतों को या तो जन्नत में मूव कर दो या जहन्नम में ले जाओ, यह आपकी अपनी मर्जी है। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इन आयतों के बाद क्या फरमाया, और कुछ थोड़ी सी आसाइश और लग्जरी जिंदगी का एहसास दिलाया जा रहा है 51 में, मुत्तकी नफीहा यद ऊ नफीहा बिफा की हतिन कसीरतिन, तकिए लगाए होंगे उसमें और तलब करेंगे इसमें मेवे बहुत सारे व शराब और मशरूबात भी। क्या रिजॉर्ट है, जेन में आता है, खूबसूरत जगह भी है और खूब तकिए लगा के बैठे हुए और ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे लिए स्मूदी ले आओ, मेरे लिए मैंगो जूस ले आओ, मेरे लिए मिंट लेमनेड ले आओ। फल भी हैं और फल एक ऐसी चीज है जो खाने में सबसे ज्यादा लजीज लगती है, और शराब है पीने की भी चीज है, यानी हर लग्जरी है। इमेजिन करें जरा, वह इन दम का सिरा तो तरफियत रोब, और इनके पास होंगी इनकी बीवियां नीची निगाहों वाली इनकी हम उम्र, पीछे भी बात हुई ना सूरत सवाफात में, नीची निगाह वाली औरत खूबसूरत होती है, उसकी निगाह आवारा नहीं होती, फ्लर्टी नहीं होती, और जितनी औरत की निगाह झुकती है वो उतनी खूबसूरत लगती है, आंखों में आंखें डाल के पट पट देखती लड़कियां कभी अच्छी नहीं लगती। और अतराब तिरबुन की जमा, हम उम्र एज फैलो लाजवाल हुस्न व जमाल की हामिल औरत को कहते हैं, यानी एज डिफरेंस नहीं होगा। दुनिया में बात तो ऐसा हो सकता है, बीवी बहुत छोटी हो मर्द बड़ा हो, अब वो टेस्टी नहीं मिल पा रहे हुँ? और अपोजिट भी हो सकता है, बीवी जरा संजीदा मिजाज की है मर्द असल छोटे, वहां सब बराबर होंगे, और अगर उम्रों का फर्क था भी तो वहां मिजाज एक होंगे। अल्लाह ताला हमें दिखाए और वहां जाके देखेंगे ये सब कुछ क्या है। इसी तरह एक और मानी भी लिया गया, हम सिन बीवियों का मतलब क्या है कि वो आपस में हम सिन होंगी, यानी सब औरतें जन्नत की एक ही जैसी होंगी, और ये कि वो अपने शौहरों की भी हम सिन होंगी। रिवायत में आता है कि जन्नत के मर्द 30 से 35 साल के होंगे, यानी औरतें और मर्द ऑलमोस्ट तो एक ही उम्र आती है, लेकिन अब हम के हमारी नजर में तो टीन अच्छी होती है, 18, 14, 16 हम्म, तो लेकिन असल जो समझदारी और जो एक निखार आता है ना बंदे में, वो वाकई 25-30 साल की उम्र में आता है। पहले तो बेवकूफियां ही होती हैं, एंजॉय भी नहीं कर पाता इंसान जिंदगी को। बहरहाल कोई भी उम्र हो, अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचा दे, वो 30 का करके पहुंचाए, 40 का पहुंचाए, या जो भी है, लेकिन अल्लाह हमें दुनिया में अपनी इस्मतों की हिफाजत करने वाला बनाए। इतना प्यारा मंजर दिखा के फरमाया, हाजमा तू अदू नलियो मिल हिसाब, ये कुछ है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था हिसाब के दिन के लिए। आ गया ना आज रिजल्ट, सब मिल गया, अपने आप को चेक करें, कोई आपको कहे हाँ समा तू अदुन, ये था वो दिन जिसके लिए तुमसे वादे थे। आएगा ना एक दिन, बताइए मुझे, खुद को चुटकी काट के बताएं, यकीन दिलाएं कि कयामत के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी जाऊंगी, वो दिन आएगा, अल्लाह ने तैयारियां की हुई हैं, तो बस मैं थोड़ी सी कोशिशें तो कर लूं, बस थोड़ी सी कोशिशों में फुर्ती दिखानी है, सुस्तियां छोड़ के ढीलेपन। आजकल के दौर में इन पारों में अगर ढीलापन है और सुस्ती है तो कब आएगी फिर फुर्ती हमारे अंदर? फिर तो अपने आप से कहें कि पता नहीं फिर मैंने कभी आगे बढ़ना भी है कि नहीं। मायूसी की जरूरत नहीं है, अपने इसलाह की जरूरत है। अल्लाह कहता है ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया था, और इन हाजल रिस्कुना मा लहू मिन नफाद, ये है हमारी अता की हुई चीजें जो कभी खत्म ना होंगी। ये भी बड़ा खूबसूरत नुकता है, दुनिया में मनपसंद चीज मिल भी जाए ना साथ ही खत्म हो जाएगी। बस आप सोचिए, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है और आप गए और जाके ले आए मैकडोनल्ड से बड़ी मजे की आइसक्रीम, हर बाइट पे बच्चों के दिल डूब रहे होते हैं, हाय अब नीचे क्या रह गया, वो नजरें अंदर और झुका रहे होते हैं, अच्छा खत्म हो गया बस, नीचे से पतला सही था ग्लास, लेकिन वहां खत्म नहीं होगा। क्या खूब वो जन्नत है, तो क्या खूब कोशिशें होंगी उसके लिए, क्या फिक्र करें, क्या छोड़ रहे हैं हम आज उसके लिए, और क्या खूबसूरत बदले नहीं चाहते हम? क्या हम अपने दोस्त नहीं हैं? क्या हमें खुद से मोहब्बत नहीं है? क्या हम इतने मन चले हैं? क्या हम इतने ना समझ हैं? क्या हम बच्चे हैं? क्या बचपन है हमारे अंदर? अल्लाह करे, इज्जत के साथ दे रहा हूं, इतना रिस्क है, अतिये के मानों में, तोहफे के मानों में दिया जा रहा है, और नफाद इनकिता खात्मा, यानी जन्नत की नेमतें गैर फानी होंगी और इजाज़ व इकराम भी दायमी होगा। मेहमान आता है, पहले दिन बड़ी इज्जत करते हैं, दूसरे दिन थोड़ी सी कम, तीसरे दिन चार कम, फिर उसके बाद रास्ता देखते हैं, अच्छा भैया कब जाएंगे खैर से, वहां का नहीं, ना इज्जत में कमी ना खाने में कमी, और अल्लाह ताला वहां ये सब जन्नतियों के लिए ले आएगा। हाँ सा, ये खाओ, ये चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब अगली आयतें पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा। ऐसे लगता है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने जो कुछ तैयार किया हुआ है, बस उसको जाके पकड़ ले, एक दफा जाके सोल्ड का बोर्ड लगा दे कि मैंने इसको ले लिया, अब तुम ना इसको देखो। सारे भी ले लेंगे, अल्लाह फिर आने वालों को फिर नए भी दे देगा। उसकी सप्लाई कभी नहीं रुकती। और जन्नत अदन की ये बातें हो रही हैं। एक रिवायत में आते इब्ने अबी हातिम की कि जन्नत में एक महल अदन है जिसके आसपास बुर्ज हैं, जिसके 5,000 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर 5,000 चादरें हैं। इनमें सिर्फ नबी या सिद्दीक या शहीद या आदिल बादशाह रहेंगे। अल्लाह अकबर। और ये भी रिवायत से मिलता है कि 8 दरवाजे हैं जन्नत के। हर बंदा अपने अमाल के अतबार से जाएगा जन्नत में और उस दरवाजे से गुजरेगा जो उसका अमल ज्यादा होगा। एक जगह जन्नत की नेमतों के लिए आता है गैरा मजजूज, एक जगह आता है गैरा ममनून। कभी खत्म नहीं होंगी, कभी रोका नहीं जाएगा, नहीं थोड़ा है कम खाओ दूसरों को भी देना है, नहीं। एक जगह आता है कुलहा दाइमु व जिल्लुहा, इसके फल हमेशा रहने वाले और उसके साए बहुत दायमी है। अपने लिए भी दुआ करें और अपने प्यारों के लिए भी।
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد